नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल रात मंजूरी दी। लोकसभा ये विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है। सरकार इसके माध्यम से वर्ष 2047 में विकसित भारत के राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना चाहती है। इस कानून के तहत हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। राज्यसभा में चर्चा में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम के आदर्श वाक्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। श्री चौहान ने कहा कि सरकार समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गाँव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी।
भाजपा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने कहा कि देश की 70% आबादी गांव में रहती है और इस बिल का मकसद उनके जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये बिल विकसित भारत बनाने में सहायक होगा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिल को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। संसद ने भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का टिकाऊ उपयोग और विकास शांति विधेयक पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास से परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
बिफोर 2013-14 से पहले परमाणु ऊर्जा विभाग का बजट महज 13,889 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष बढ़कर 37,483 करोड़ का हो गया है। इसमें करीब 107% की बढ़ोतरी हुई है। 2015 में सरकार ने एक और साहसिक निर्णय लिया और परमाणु क्षेत्र को संयुक्त उद्यमों के लिए खोल दिया, लेकिन संयुक्त उद्यम केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक ही सीमित थे, ये निजी क्षेत्र के लिए नहीं था। 2017 में पहली बार मंत्रिमंडल ने 10 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दी।
अप्रूवल वॉज गिवन टू सेट अप 10 रिएक्टर्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक के पारित होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे भारत के प्रौद्योगिकी परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को गति देगा, हरित विनिर्माण को सक्षम बनाएगा और देश तथा दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को निर्णायक गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति विधेयक निजी क्षेत्र और युवाओं के लिए भी अनेक सर खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष क्षेत्र के लिए प्रमुख डिजिटल पोर्टल माई आयुष एकीकृत सेवा पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। इसे आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए वैश्विक मानक के रूप में परिकल्पित किया गया है। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षण पर WHO की रिपोर्ट और आयुष मंत्रालय के 11 वर्षों के परिवर्तन पर पुस्तक का विमोचन करेंगे। वे अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। श्री मोदी वर्ष 2021 से 2025 के दौरान योग के संवर्धन तथा विकास में योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने मस्कत में ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इसे दोनों देशों की सदियों पुरानी मित्रता को समर्पित किया। इससे पहले भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठकें भी की। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने का अनुमान है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।